بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پہ. السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے اور انداز جہاں میں آج گفتگو ہوگی ایران کے بارے میں. آئیے یہ کہ سربراہ کی تازہ رپورٹ کے تعلق سے، ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahartv.ir اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے andaz_jahan@sahartv.ir. تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں. ناظرین آئیے یہ کہ ڈائریکٹر جنرل یوکی آمانو نے ایران کے بارے میں اپنی تازہ رپورٹ میں، جو انہوں نے جنرل اسمبلی میں پیش کی، کہا ہے کہ چونکہ بقول ان کے ایران اس طرح تعاون نہیں کر رہا ہے جس طرح وہ چاہتے ہیں، اس لیے آئیے یہ اس بات کی تصدیق کرنے سے قاصر ہے کہ ایران کا ایٹمی پروگرام مکمل طور پر پرامن ہے. انہوں نے اس سلسلے میں پارچن سائٹ کا ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ سائٹ میں سرگرمیاں بڑھ گئی ہیں. یوکی آمانو نے یہ بیان ایسی حالت میں دیا ہے کہ خود انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ ایران اور IAEA کے درمیان مذاکرات کے عمل میں فروغ آیا ہے، اور اس کے علاوہ ایران کی تمام ایٹمی سائٹوں پر IAEA کے کیمرے نصب ہیں، اور وہ خود کہہ چکے ہیں کہ ایران کی ایٹمی سرگرمیاں IAEA کی نگرانی میں جاری ہیں. اس کے علاوہ ایران نے IAEA کے ساتھ بھرپور تعاون اور مذاکرات، نیز گروپ 5+1 کے ساتھ بھی مذاکرات کے لیے ہمیشہ اپنی آمادگی کا اعلان کیا ہے. یوکی آمانو نے جنرل اسمبلی میں پیش کردہ اپنی رپورٹ میں صہیونی حکومت کے ایٹمی پروگرام کا کوئی ذکر نہیں کیا، جس کا پروگرام فوجی ہے اور وہ NPT کا ممبر بھی نہیں ہے، اور اس کے ایٹمی پروگرام پر IAEA کی کوئی نگرانی نہیں ہے. تل ابیب نے IAEA کے انسپیکٹروں کو اپنی ایٹمی تنصیبات کے معائنے کی اجازت نہیں دی ہے، اور مشرق وسطی میں وہ واحد ایسی حکومت ہے جس کے پاس ایٹمی ہتھیار موجود ہیں، اور وہ بھی 1, 2, یا 10, 20 نہیں، بلکہ اس کے پاس موجود ایٹم بموں کی تعداد 250 سے 400 تک بتائی جاتی ہے. اس کے علاوہ آج کے پروگرام میں ہم اس بات کا بھی جائزہ لیں گے کہ ایران کے تعلق سے امریکہ کے جو صدارتی الیکشن کا نتیجہ ہے، اس کے اثرات گروپ 5+1 کی پالیسیوں پر کیا پڑیں گے. تو آئیے چلتے ہیں دہلی اسٹوڈیو، جہاں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبہ سیاسیات کے پروفیسر ڈاکٹر ارشی خان صاحب موجود ہیں. ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ارشی خان صاحب، السلام علیکم جناب. جناب، امریکہ کے صدارتی الیکشن کے نتیجے کا ایران کے بارے میں گروپ 5+1 کی پالیسی اور روش پر کیا اثر مرتب ہو سکتا ہے؟
دیکھیں، یہ جو الیکشن ہوا ہے اور جس میں اوباما صاحب کی جیت ہوئی ہے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ پورے امریکن میڈیا میں یہ بات بالکل کھل کے آئی ہے کہ جو وہاں کا مڈل کلاس ہے، جو لوور مڈل کلاس ہے، انہوں نے اوباما صاحب کو ووٹ دیا. اور اوباما کا جو فوکس ہے وہ زیادہ تر آپ کے ڈومیسٹک ایشو پہ ہے، جو وہاں پہ اکنامک بحران ہے اس کو حل کرنے کے لیے ہے، اور وہاں پہ جو لوگوں کی بہت سارے جو مسائل ہیں، خاص کر کے اقتصادی مسائل، اس کو حل کرنے کے لیے ہے. اگر آپ آؤٹ سائڈ امریکہ دیکھیں تو جو اوباما کا جو ایجنڈا ہے وہ بیسیکلی زیادہ پیسفل ہے ان کمپیریزن ٹو رومنی. ریپبلکن پارٹی کے مقابلے میں وہ چاہتے ہیں کہ ایران سے نیگوسیشن ہی ہو، ڈائلوگ ہو، اور ڈائلوگ کے ذریعے ہی مسئلہ حل ہو، نہ کہ ایران کے خلاف کوئی فوجی کاروائی ہو، جبکہ جس کے بارے میں پریشر لگاتار دوسرے کنٹریز سے مل رہے ہیں، خاص کر کے اسرائیل سے، اور آپ کے رومنی صاحب نے بار بار یہ کہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اوباما صاحب کی جیت کی وجہ سے اور ان کے آنے کی وجہ سے جو P5 ہیں ان پہ ایک پازیٹیو اثر پڑے گا، اور ایک پھر ایک نیا دور نیگوسیشن کا، ڈائلوگ کا پھر ریوائیو ہوگا. जिस तरह से आपको याद होगा कि जब शुरू में ओबामा साहब ने जब फर्स्ट ईयर में जो अपना ओहदा संभाला था सदारती ओहदा, उसके पहले जब इलेक्शन में जीतने के पहले उन्होंने कहा था कि हम ईरान से डायरेक्ट बातचीत करेंगे, डिबेट एंड डिस्कशन करेंगे, लेकिन जब वो अब सदर बन गए तो उन पर काफ़ी जो जायनिस लॉबी थी या जो एंटी ईरानियन लॉबी थी उसका प्रेशर पड़ा और उसके बाद वो डायरेक्ट निगोसिएशन नहीं कर सके ईरान से। तो मैं ये समझता हूँ कि ओबामा साहब को जो मैंडेट मिला है, खास करके वहाँ के आम लोगों का जो वहाँ के इकोनॉमिक परेशानियों से जूझ रहे हैं, और जबकि ईरान में भी सैंक्शन है वहां के भी लोगों को परेशानी है, लेकिन जो इकोनॉमिक बहरान आया है अमेरिका में वहां पे भी आम जो लोग हैं वो काफी परेशान हैं। तो मैं समझता हूं कि ओबामा साहब की ये जीत और उनके उनकी डेमोक्रेसी और लोगों का जो ताउन उनको मिला है, तो शायद वो ईरान के साथ दोबारा ताउन करें ताकि जो है मसले का पीसफुल हल हो सके।
जी बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन हमारे इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान के मुमताज दानश्वर और सीनियर तजिया निगार डॉक्टर कंदील अब्बास साहब। कंदील अब्बास साहब अस्सलाम वालेकुम जनाब। जनाब आप क्या कहते हैं अमेरिका के सदारती इलेक्शन के नतीजे का ईरान के बारे में ग्रुप 5+1 की रविश पर क्या असर पड़ सकता है?
देखिए मेरे ख्याल में जो ओबामा साहब की पॉलिसी ऑलरेडी थी पिछले उनके दौर में वो तो यही चाहेंगे उसको कंटिन्यू करें, लेकिन जो हालिया इलेक्शन कैंपेन्स चली हैं इसमें ओबामा की जो फॉरेन पॉलिसी थी इस पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ है, अगरचे जो अमरीकी अवाम है उस उनके जो वोट देने का रुझान था उसमें फॉरेन पॉलिसी के ऊपर कोई ज़्यादा फोकस नहीं था, और जो वहाँ सर्वेज हुए हैं उसमें से सिर्फ 4% ऐसे लोग थे जिन्होंने फॉरेन पॉलिसी को बेस बनाकर वोट दिया है, इसलिए कि खुद जो अमेरिकन मीडिया है वो डोमेस्टिक लेवल पे फॉरेन इश्यूज को बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं करता, और जो फॉरेन पॉलिसी बनती है इसमें जो अमेरिका की पब्लिक ओपिनियन उसका ओपिनियन है उसका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होता, और फॉरेन पॉलिसी की डिज़ाइनिंग मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो वहाँ का वाइट हाउस होता है और वहाँ का फॉरेन ऑफिस होता है। अब इस चीज़ को अगर मद्देनजर रखें तो जाहिर है कि जो पब्लिक ओपिनियन आई है वो अप्स एंड डाउन्स जो आए हैं उसको मैं नहीं समझता कि बहुत ज़्यादा जो नया दौर शुरू होगा इस पर असरअंदाज होगी। ओबामा साहब यही चाहेंगे कि उसमें एक कंटिन्यूटी रहे। ओबामा की पॉलिसी ये है ईरान के बारे में कि वो फिजिकल वॉर या एक जंग से अवॉइड करें, और पीसफुल मैनर के लिए जो उन्होंने तरीका इख्तियार किया वो सैंक्शंस का है, और सैंक्शंस की वजह से जाहिर है कि ईरान के ऊपर बहुत ज़्यादा वो दबाव डालना चाह रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ इसराइल का दबाव ये है कि ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की जाए, लेकिन चूंकि ईरान की तरफ से जो मौकफ अपनाया गया है वो उसकी बेस पर जो रीजनल लेवल पर एक पब्लिक ओपिनियन उभर कर सामने आ रही है वो यही है कि पाबंदियों की वजह से ईरान का जो आम शहरी है वो मुतासर हो रहा है, और उसके मुतासर होने की वजह से जो ह्यूमन राइट्स है उसकी वायलेशन हो रही है, और जिस वजह से ईरान के ऊपर दबाव डाला जा रहा है वो भी कोई जस्टिफाइबल रीज़न नहीं है, और ईरान को बजाय इसके कि जो रीजनल लेवल पर जो एक प्रोसेस है उससे आउट किया जाए और उसके ऊपर दबाव डाला जाए, जो पब्लिक ओपिनियन है उसका जोर यह है कि ईरान को उस प्रोसेस के अंदर लाया जाए, ईरान की जो एक म्यूचुअल रेस्पेक्ट है उसकी बेस पर ईरान के साथ डायलॉग किया जाए और उसकी बेस पर जो ताल्लुकात उनको आगे बढ़ाया जाए, और जो चूंकि ईरान का जो जेस्चर है वो भी पॉजिटिव है और वहाँ से भी जो पॉजिटिव जो भी सजेशंस आती हैं उसको वेलकम किया जाता है, तो मैं समझता हूँ कि फ्यूचर में काफ़ी हद तक पब्लिक ओपिनियन जो रीजनल है वो तो असरअंदाज होगी ओबामा साहब की पॉलिसियों पे, लेकिन अमेरिका की जो डोमेस्टिक पब्लिक ओपिनियन है उसका कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा।
जी नाज़रीन आइए ये कि ईरान के बारे में IAEA की ताज़ा रिपोर्ट के ताल्लुक से हमारे दिल्ली दफ्तर ने हिंदुस्तान के सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार सौरभ कुमार शाही साहब की गुफ्तगु रिकॉर्ड की है, लेकिन इससे पहले हम एक सवाल करना चाहेंगे डॉक्टर अर्शी खान साहब से अमेरिका के सदारती इलेक्शन के हवाले से। अर्शी खान साहब, क्या आप समझते हैं कि दूसरे दौरे सदारत में ओबामा की पॉलिसी पहले दौर से कुछ मुख्तलिफ होगी, इसलिए कि पहले दौर में ओबामा ने ईरान पर दबाव बनाए रखा है?
मेरे ख्याल से बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए वो बिल्कुल मुख्तलिफ होगी, इसलिए कि आप जान रहे थे कि जो एंटी ओबामा जो ग्रुप्स थे उसमें इसराइल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था, वो ये नहीं चाह रहा था कि ओबामा साहब जीते, बल्कि रोमनी जीताना चाह रहे थे वो, लेकिन ओबामा साहब जीत गए। लेकिन अब वहां पे जो लॉबीज हैं वो इतनी स्ट्रांग हैं कि दोनों में उनका इन्वेस्टमेंट है, रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेट पार्टी दोनों में। लेकिन जिस तरह से वो दबाव दे रहे हैं, मतलब इसराइल जिस तरह से दबाव दे रहे हैं खास करके ओबामा पे, मैं ये समझता हूं कि ये जो सेकंड टर्म है ये वहां के लोगों का एतमाद हासिल किया है ओबामा साहब ने, और ओबामा साहब को वहां के लोगों की ताकत का एहसास हुआ है, ना कि कोई ऐसी ताकत का जो मुल्क से बाहर है। तो मैं ये समझता हूं कि इसराइल को रेजिस्ट करने में ओबामा साहब ज्यादा मजबूती का एहसास करेंगे, उन्हें करना चाहिए, इसलिए कि ओबामा साहब, और आप जानते हैं कि जॉन मिरशिमर का पेपर है स्टेट वॉल्ड का, उसके पहले निक्सन ने भी कहा था, जो रिचर्ड निक्सन जो बाद में जो आपके ईरान गेट स्कैंडल हुआ, तो उसमें भी आपने देखा तो उन्होंने कहा था कि जो अमेरिका की जो फंड पॉलिसी है वो अमेरिकन नेशनल इंटरेस्ट में होनी चाहिए, ना कि वो किसी और कंट्री के नेशनल इंटरेस्ट में होनी चाहिए। तो मैं ये समझता हूं कि ओबामा साहब इस नए इलेक्शन के बाद हो सकता है कि उनके जहन में ये बात आए कि उनको एक ज्यादा इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को परसू करें, ताकि ईरान या और भी जो डिफरेंट कंट्रीज उनके साथ इंसाफ किया जा सके।
जी बहरहाल ये तो आने वाला वक्त बता देगा कि ओबामा साहब की पॉलिसी पहले दौर से कितनी मुख्तलिफ होती है और कितना वो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को सेहूनी लॉबी से आज़ाद करा सकते हैं। आते हैं ईरान के एटमी प्रोग्राम के बारे में, योकिया अमानो की रिपोर्ट के बारे में। तो लीजिए मुलाहिज़ा फरमाइए इस बारे में हिंदुस्तान के सीनियर सहाफ़ी सौरभ कुमार शाही साहब के ख्याल।
अच्छा, जो आईएए की लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके मुताबिक ये कहा गया है कि कॉर्पोरेट ईरान जो है वो नहीं कर रहा उनके साथ। इसमें मैं एक बात पहले कहना चाहता हूँ कि आप पुरानी रिपोर्ट्स को देखें, जहाँ तक आईएए की बात है तो उन्होंने प्रीवियसली जो भी पहले उन्होंने रिपोर्ट दी है उसमें हेयर से और र्यूमर्स जिसको कहते हैं उसका उन्होंने सहारा लिया है। ये बात आईएए के जो हुक्मरान जो पहले से वहाँ पर ऑफिसर्स हैं वो भी इस बात को मानते हैं। अलबरादेई साहब जो पहले उसमें थे उन्होंने भी ये एडमिट किया है। उसके अलावा हैंस ब्लिक्स जो कि वेपन इंस्पेक्टर थे उन्होंने भी एडमिट किया है। और इससे पहले ऐसा ही हुआ है जब एक एनेक्शर जो इन्होंने पिछली दफ़ा ऐड किया था वो एनेक्शर कंप्लीटली र्यूमर पे बेस्ड था, यानी उस पर कोई फैक्ट्स उसमें नहीं थे, पर उन्होंने एनेक्शर को लगा दिया और उस एनेक्शर को लेके बाकी लोगों ने पूरे वर्ल्ड में मीडिया ने उसे इस तरह प्रेजेंट किया एज इफ कि इनके पास जो है वो कोई न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसके बारे में कोई सबूत हो। पर आपको ये बता दूं कि वो एनेक्सर जो था वो करीब 7 साल पुराना था और चूंकि उसमें लिखी गई बातें जो थी वो प्रूव नहीं हुई थी, इसको इस कारण से वो एनेक्सर जो है वो रिपोर्ट में पहले नहीं लगाई गई थी, पर इस बार उन्होंने बिना पूछे और बिना ईरान को बताए एनेक्सर में उसने रिपोर्ट लगा दी। दूसरी बात जो ये बार बार कहते हैं प्राचीन में जो जो बेस है उसको विजिट करने की बात, तो आईएए की जो रूल है या जो इन्होंने जो जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है उसके जो रूल्स हैं उसके उसमें ये साफ कहा गया है कि जो नॉन न्यूक्लियर मिलिट्री बेसेज हैं वहाँ पे उनको विजिट करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन फिर भी आपको याद होगा 2005 में दो दफ़ा ईरान ने उनको 2007 में और 2005 में दो दफ़ा ईरान ने उनको अलाउ किया पराचिन विजिट करने को, उनसे कहा कि आप बिल्डिंग्स को चूज़ कर लें, आप देख लें कहाँ पर आप इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, और दोनों दफा इन्वेस्टिगेशन में कुछ भी नहीं मिला। बाद में ईरान को यह पता चला कि कहीं ना कहीं आईए के थ्रू उन बिल्डिंग्स के बारे में लीक जो है, क्योंकि ये सेंसिटिव बिल्डिंग्स हैं, ये मिलिट्री बिल्डिंग्स हैं, इनकी इनको लीक कर दिया गया दूसरे कंट्रीज को। तो ऑब्वियसली अब जो ईरान है वो डरा हुआ, उसे लगता है कि ये आईए के इंस्पेक्टर्स आते हैं तो जांच करने के बहाने पर ये इंटेलिजेंस लीक जो है सेंसिटिव जो मिलिट्री बेसेज हैं उनके बारे में जो है वो लीक्स हो जाती हैं। इसको लेके ये जो है आप देख रहे हैं कि ये जो टसल जो है वो चल रही है। लेकिन जहाँ तक मिलिट्री बेस विजिट करने की बात है, जो वो कह रहे हैं कि कोऑपरेट नहीं कर रहे, तो आप ये देखें कि क्या गाइडलाइंस हैं। गाइडलाइंस एनपीटी की ये कहती हैं कि आप वहाँ विजिट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी ईरान ने आप जिसको कह लें अपनी तरफ से एक इनिशिएटिव लेते हुए अलाउ किया। अब बार बार आप अगर किसी मिलिट्री किसी भी कंट्री के नॉन न्यूक्लियर मिलिट्री बेस पर विजिट करने की बात कहेंगे तो कोई भी कंट्री कोऑपरेट नहीं करेगा। इसीलिए मुझे लगता है कि ये कॉपरेशन की बात ही नहीं, ये लॉ की बात है।
बहुत बहुत शुक्रिया कंदिल अब्बास साहब। जनाब ईरान के बारे में आईएए की के सरबरा योकिया अमानो की ताजा रिपोर्ट के बारे में आप क्या कहते हैं?
जी देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये जो हालिया रिपोर्ट आई है और आईएए के सरबरा ने ये रिपोर्ट खुद तो नहीं आ सके और इसको तहरीरी शक्ल में जनरल असेंबली के जो अराकीन है उनके सामने पेश किया है, इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है। और पिछले चंद सालों की अगर रिपोर्ट्स उठा के देखें तो उसी की फोटोकॉपी नज़र आती है, यहाँ पे भी अटैच की गई है, इसलिए कि इसमें भी वही सेम एलिगेशंस हैं ईरान के ऊपर। और साथ साथ ईरान के साथ शाम का नाम भी लिया गया और शुमाली कोरिया का नाम भी लिया गया, और स्पेशली इन तीन मुल्कों को फोकस करके ये कहा गया कि इन मुल्कों से तआवुन नहीं मिल रहा। अब सूरत हाल ये है कि जैसा ईरान ने एनपीटी पर चूंकि साइन किए हुए हैं और इसी बेस पर ईरान अपने आप को उस कानून का पाबंद समझता है जिसकी खिलाफवर्जी आज तक कोई साबित हुई भी नहीं है, यानी एनपीटी की जो मैं बात कर रहा हूँ, इसके तहत ईरान के अंदर ना सिर्फ इंस्पेक्टर्स का आना जाना है जो न्यूक्लियर बेसिस हैं, और वहाँ पर कैमरे भी लगे हुए हैं और वो सेंसिटिव कैमरे हैं जहाँ पर रेडिएशन या इस लेवल की जो न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ हैं उसको रिकॉर्ड किया जा सकता है। और इस कदर सुपरविजन होने के बावजूद अगर ईरान पर ये एलिगेशन लगाया जाएगा कि वहाँ पर मशकूक किस्म की एटमी सरगर्मियाँ हो रही हैं, तो उसको एविडेंस देना बहुत ज़रूरी है। जो रिपोर्ट आई है इसमें किसी एविडेंस का जिक्र नहीं है कि फलां एविडेंस के तहत वो कह रहे हों कि इसमें मशकूक सरगर्मियाँ हैं। लेकिन इसके साथ अगर हम दूसरी जानब देखते हैं तो इसराइल ने अभी तक एनपीटी को साइन नहीं किया हुआ और ना ही वहाँ पर आईएए के इंस्पेक्टर्स हैं और ना वहाँ पर कोई कैमरे लगे हुए हैं। अब ऐसी सूरत में पोजीशन तो ये बन रही है कि जिन मुल्कों ने एनपीटी पर साइन किए हुए हैं उनका एतमाद आईएए से उठ जाएगा, इसलिए कि चूंकि उन्होंने साइन किए हुए हैं इसलिए वहां पर सुपरविजन भी हो रही है और उनके हाथ बांध दिए गए हैं कि आप ऐसी पीसफुल जो एटॉमिक एक्टिविटीज हैं वो भी ना करें। हालांकि जो मुल्क एनपीटी को साइन करते हैं उन जो साइन करने वाले मुल्क हैं उनको सहूलियात पहुंचाना आईएए की जिम्मेदारी है और आईएए का ये फर्ज बनता है कि वो एक सुपरविजन के तहत जो मुल्क एटमी सरगर्मियां पीसफुल पर्पज के लिए करना चाहते हैं उनको फैसिलिटेट करे, वो एग्रीकल्चर के शोबे में हो, वो पावर के शोबे में हो, वो हेल्थ के शोबे में हो, उसको फैसिलिटेट करना चाहिए। लेकिन यहां पर एक ना सिर्फ ये कि उनको एक्टिविटीज नहीं करने दी जा रही बल्कि हाथ बांधने की बात हो रही है। और इसमें मैं समझता हूं कि मेन इशू ईरान की एटमी सरगर्मियां नहीं है बल्कि जो होम ग्रोन नेचर है ईरान के एटॉमिक प्रोग्राम की, वो असल प्रॉब्लम है उनके लिए कि यहाँ पर नहीं होना चाहिए। और इसके पीछे बाजू का फील ये होता है क्लियरली कि जो रिपोर्ट आती है वो किसी सियासी दबाव का नतीजा है।
जी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अर्शी खान साहब। योकिया अमानो ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि आईएए बकौल उनके इस बात की तस्दीक करने की पोजीशन में नहीं है कि ईरान का एटमी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर पुरअमन है। इसके लिए उनका कहना यह है कि बकौल उनके ईरान पूरी तरह से तआवुन नहीं कर रहा है, और इस हवाले से उन्होंने पारचिन एटमी तनसीबात की तरफ इशारा किया है और यह कहा है कि पारचिन में सरगर्मियां बढ़ गई हैं। पारचिन जो है ये एक फौजी मरकज है और कानूनी तौर पर आईएईए को किसी भी मुल्क के फौजी मरकज का मुआयना करने का हक नहीं है, और अगर ईरान को आईएईए के इंस्पेक्टरों पर शक है तो उसके पास इसकी दलील भी मौजूद है और इससे वो आईएईए को मुतला भी कर चुका है कि माजी में उसने जो इत्तलाआत आईएईए को फराहम की थी जिनके ताल्लुक से आईएईए का फरीजा था कि उनको खुफिया रखते और उनको इदारे से बाहर जाने से रोका जाता, वो इत्तलाआत अमरीका और सेहूनी हुकूमत को पहुंच गई और नतीजे के तौर पर कई ईरानी एटमी साइंसदान शहीद कर दिए गए। तो एक फौजी मरकज का मुआयना करने का अगर मुआयना किया जाए और ईरान उससे इनकार करे तो क्या इसको अदम तआवुन का नाम दिया जा सकता है?
देखिए, ये पूरी दुनिया जानती है कि आईएईए का जो रिपोर्ट है, खास करके 67th यूएन जनरल असेंबली में 67th इसमें सेशन में जो इसका रिपोर्ट पेश किया, खास करके सोमवार को 5 नवंबर को, और पिछले साल भी इन्होंने जो रिपोर्ट पेश किया था वो भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल था, और इस साल भी इन्होंने कहा कि ईरान तआवुन नहीं कर रहा है और ईरान से कि ईरान के पास से कोई ऐसा सबूत नहीं है, हासिल नहीं हुआ कि वो वहाँ पे न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहा है या उसकी तैयारी नहीं कर रहा है। तो ये टोटल जो रिपोर्ट है आईएईए की, या जो आईएईए के टोटल एक्सप्रेशंस आप देखेंगे या जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं खास करके यूकी अमानो साहब के, वो बिल्कुल साफ तौर पे लगते हैं कि वो आपके बायस्ड हैं, प्रिजुडिस्ड है, स्पॉन्सर्ड लगता है, पॉलिटिसाइज्ड है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, बेस्ड ऑन सस्पिशन है, डाउटफुल है, एम्बिगुअस है, तमाम चीज़ें जाहिर हैं आपके उनकी रिपोर्ट में। इसलिए कि वो एक तरफ से इल्ज़ाम लगाते हैं कि ईरान के पास से इस चीज़ के होने का इम्कान है। आप ये जानते हैं कि इंटरनेशनल लॉ में या डोमेस्टिक लॉ में आप सिर्फ शक की बेसिस पे कुछ नहीं कर सकते। अगर सिर्फ शक आप करेंगे तो उससे तो बहुत बड़ा मामला खड़ा हो सकता है। ईरान के साथ एक्चुअली यही हो रहा है। अगर आप एनपीटी को देखें तो एनपीटी का मेंबर है, सिग्नेटरी है ईरान, आईएईए का भी मेंबर है ईरान। ईरान ने पूरी तरह से 2003 से कॉपरेट किया है आईएईए को, और एनपीटी में आप जानते हैं कि 11 आर्टिकल हैं, और जो पहला आर्टिकल है उसको भी ईरान ने वायलेट नहीं किया। पहला आर्टिकल ये कहता है कि जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं वो सप्लाई नहीं करेंगे किसी भी तरह का न्यूक्लियर वेपन ईरान को, जो कि नहीं हुआ। जो आर्टिकल 2 है वो ये कहता है कि जो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं वो कोई भी इस तरह का एटमिक के वेपन्स वो रिसीव नहीं करेंगे। तीसरा ये कहता है कि आप जो कंट्रीज जो इसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी या न्यूक्लियर एनर्जी में, वो साइन तावुन करेंगे आईएईए के साथ, वो भी ईरान ने किया। आपके आर्टिकल 3 की मैं बात कर रहा हूँ। आर्टिकल 4 आप देखेंगे तो आर्टिकल 4 जो एनपीटी का जो आर्टिकल 4 है, ये पूरी आज़ादी देता है, इन एलियनेबल राइट, मतलब के बेसिक राइट है या फंडामेंटल राइट है हर एक स्टेट का, कि न्यूक्लियर एनर्जी को या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को सिविलियन पर्पस के लिए और अमन पर्पस के लिए, बिजली पैदा करने के लिए या मेडिकल यूज के लिए वो इस्तेमाल कर सकता है। ये आर्टिकल 4 कहता है, ये एनपीटी का आर्टिकल है। अगर आर्टिकल 5 आप देखेंगे तो उसमें ये भी है कि जो कंट्री न्यूक्लियर एनर्जी डेवलप करना चाहता है उसको पूरा हक है कि वो उसे प्रोड्यूस करे, उस पर रिसर्च करे, उसकी टेक्नोलॉजी पे काम करे, वो टेक्नोलॉजी खरीदे। ये तमाम चीज़ें आर्टिकल 5 में है। तो ना आर्टिकल 5 का, बाकी चीज़ें जो हैं और जो आर्टिकल्स वो भी इसी तरह के नेचर के हैं, लेकिन जो बेसिक आर्टिकल्स हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं आपके एनपीटी के, वो ये हैं। तो एनपीटी का वायलेशन ईरान ने नहीं किया। कंदील साहब ने भी इस बात को बताया कि वहाँ पे सारे कैमरे लगे हुए हैं, इंस्पेक्शन जारी है। और अगर आप देखें आईएईए का रोल देखें तो ये जो यूकी अमानो साहब हैं ये 5th डायरेक्टर जनरल हैं। पहले डायरेक्टर जनरल अमेरिकन थे, उनके बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन हैंस ब्लिक्स ने जिस तरह से इल्ज़ाम लगाए खास करके इराक के ऊपर में वहाँ पे, तो ये पूरी तरह से क्लियर है। वो सेम गेम जो इराक के साथ खेला गया था वो सेम गेम आईएईए आपके ईरान के साथ खेलना चाहता है। तो हैंस ब्लिक्स साहब का रोल मैंने देखा, खास करके मैंने यहाँ पे न्यूज़पेपर में भी काफ़ी लिखा, टेलीग्राफ और पायनियर में, तो उसमें वो बिल्कुल उनकी न्यूट्रल पॉलिसी नहीं थी, फेयर पॉलिसी नहीं थी, दबाव में वो काम कर रहे थे। मोहम्मद अल बारादाई का भी पूरा रिकॉर्ड रहा है कि वो भी ज़्यादातर दबाव में उन्होंने काम किया। और यूकी अमानो साहब एक पहले डायरेक्टर जनरल हैं जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा दबाव में काम किया। मैं ये समझता हूँ कि अगर इस तरह की पॉलिसी आईएईए अपनाएगी ईरान के खिलाफ तो इसके बहुत सारे जो मेंबर हैं खास करके 155 जो मेंबर्स हैं आईएईए के, उनका एतमाद उड़ जाएगा। और जिस तरह से और भी इंटरनेशनल एजेंसीज को, जिस तरह से कुछ ताकतें उसको अपने मुट्ठी में लिए हुई हैं, वही हाल आईएईए का होगा। सबसे बड़ी परेशानी आईएईए के साथ ये है कि ये किसी के तरफ रिस्पॉन्सिबल नहीं है, अकाउंटेबिलिटी इसके पास ये किसी के लिए अकाउंटेबल नहीं है। ये आईएईए तो पैदा हुई आपकी यूनाइटेड नेशन से, लेकिन इसका कैरेक्टर ऑटोनोमस है और ये सिर्फ रिपोर्ट पेश करता है आपके यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को और सिक्योरिटी काउंसिल को, लेकिन इसके अंदर अकाउंटेबिलिटी फैक्टर नहीं है। लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि चूंकि यूनाइटेड नेशन से इसकी पैदाइश हुई और ये काफी रिस्पॉन्सिबल होगा, लेकिन ईरान के केस में मैं ये आपको कहता हूं कि एज ए टीचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ईरान के केस में आईएईए का रोल काफी कंट्रोवर्शियल है, हाईली पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, बिल्कुल ही फेयर नहीं है, और जितने भी इनके दलायल हैं बहुत सारी चीज़ें वो एंटिसिपेशन पे बेस्ड हैं। तो एंटिसिपेशन पे आप काम नहीं कर सकते, बेसिकली आपको फैक्ट लाना होगा। अगर उनके पास कोई फैक्ट है ईरान के बारे में कि ईरान बॉम्ब मेकिंग कर रहा है तो वो फैक्ट को हाजिर करें, वो साइट बताएं, तो वहाँ पर वो जा सकते हैं। लेकिन जिस तरह से वो एक के बाद एक के साइट पर जाना चाहते हैं, जो कि मिलिट्री, हर कंट्री का अपना मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट होता है, उनके सिक्योरिटी ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, और कोई भी कंट्री आसानी से या किसी भी तरह से वो अपने सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट को खोलना नहीं चाहेगा, वही सिचुएशन ईरान के साथ है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो आईएईए है, जो उसमें जो जिम्मेदार लोग हैं, उनको जो मैंडेट है आईए का उसको समझना चाहिए। खुद अफसोस की बात यह है कि ईरान वायलेट नहीं कर रहा आईएईए के करारदाद को या आईएईए के मिशन को या एनपीटी के आर्टिकल्स को, बल्कि खुद आईएईए खुद एनपीटी के किरदार को जो है वो ठेस पहुंचा रहा है और उसको वायलेट कर रहा है। ये एक बहुत ही बड़ा, मेरे ख्याल से ये बहुत ही बड़ा इशू है इस वक्त में, खास करके इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, कि जो इसके लिए जिम्मेदार हुकूमतें हैं, खास करके रशिया और आपके चाइना, हिंदुस्तान और भी अदर कंट्रीज, तो इस पर वो सवाल उठाएं। इसलिए कि आप जानते हैं कि आज के वक्त में 60 ऐसी कंट्रीज है पूरे दुनिया में, मतलब 194 जो यूएन के मेंबर्स हैं, 60 ऐसी कंट्री है जो ईरान की तरह न्यूक्लियर एनर्जी को या टेक्नोलॉजी को अमन के लिए इस्तेमाल करना चाहता है या मेडिकल पर्पस के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। तो वो क्या वो ईरान के तरह तमाम कंट्रीज को निशाना बनाएंगे या ईरान के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने सैंक्शन की पॉलिटिक्स शुरू कर दी और वहां के लोगों को और वहां की सोसाइटी को और वहां के गवर्नमेंट को जिस तरह से परेशान किया जा रहा है इस बुनियाद पे, सिर्फ शक की बुनियाद पे, तो मैं ये समझता हूं कि ये जो इंटरनेशनल सियासत है इसमें आईएईए का जो किरदार है वो काफी क्वेश्चनेबल है और आईएईए को एक अपने लिमिटेशन में रहना चाहिए। इसलिए कि आईएईए एक एब्सोल्यूट बॉडी नहीं है, आईएईए इरेस्पॉन्सिबल नहीं हो सकती। अगर ये रिस्पॉन्सिबल होता है तो जिस तरह से नॉर्थ कोरिया ने 2003 में अपने आप को विदड्रॉ कर लिया, तो बहुत सारे कंट्रीज जो इसके मेंबर हैं वो विदड्रॉ कर सकते हैं।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और टेलीफोन लाइन के जरिए हमारा राबता बरकरार हुआ है बेल्जियम में मुकीम पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान और मुमताज तजिया निगार मोहम्मद फैसल खान साहब से। खान साहब अस्सलाम वालेकुम। फैसल खान साहब जी, फैसल खान साहब से लगता है कि राबता हमारा मुनकता हो गया है। कंदिल अब्बास साहब, योकिया मानू ने अपनी रिपोर्ट में फनी निकात बयान करने के बजाय अमेरिका और सहयोगी हुकूमत के इल्जाम दोहराए और बगैर किसी सबूत के वो ये दावा कर रहे हैं कि ईरान तआवुन नहीं कर रहा है। क्या ये इस बात को जाहिर नहीं करता है कि उनकी रिपोर्ट मुकम्मल तौर पर सियासी मुहर्रिकात के तहत तैयार की गई है?
जी, मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि इस रिपोर्ट में चूंकि कोई क्लियर एविडेंस नज़र नहीं आ रहा इसको पढ़ने के बाद, तो लगता यही है कि ये किसी सियासी दबाव के तहत तहरीर की गई है और तैयार की गई है, क्योंकि जो एलिगेशंस हैं ईरान के ऊपर उनको प्रूव करने के लिए उसमें कोई स्ट्रांग एविडेंस नहीं है। लेकिन जो असल प्रॉब्लम है आईएईए का ईरान के साथ वो है न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल का, जो टेक्निकल एक पॉइंट है या फनी नुक्ता जिसको आप कह सकते हैं। एनपीटी सिग्नेटरी जो कंट्रीज हैं उनको ये पूरी इजाजत है कि वो अपना इंडिजिनस लेवल पर वो एक न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल बनाएं और उसके तहत वो अपनी एक्टिविटीज को आगे बढ़ाएं। लेकिन अगर ये राइट तो एनपीटी सिग्नेटरी कंट्रीज का आईएईए मान ले कि वो न्यूक्लियर पीसफुल एक्टिविटीज करें, लेकिन जो उसका फ्यूल साइकिल है वो ना बनाएं, तो इसका जाहिर है कि वो फ्यूल के बगैर तो कोई एक्टिविटी हो ही नहीं सकती। हाँ, इसके ऊपर बाज़ ऐसी खबरें आई थी कि अमेरिका और बाज़ यूरोपीय ममालिक ने कहा था कि ये फ्यूल हम प्रोवाइड करते हैं ईरान को, ईरान एक्टिविटीज़ करे, लेकिन जब ईरान ने इसके ऊपर गारंटी मांगी कि आप इंटरनेशनल गारंटी दें हमें ताकि ये फ्यूल परमानेंट आप हमें प्रोवाइड करेंगे और हमारी एक्टिविटीज़ नहीं रुकेंगी, तो इसमें भी वो फेल हुए इस तरह की कोई गारंटी देने में। लेकिन अब ये जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं इनसे हटकर सिंपली ये कह देना कि ईरान तआवुन नहीं कर रहा, अगर तआवुन नहीं है तो वो सामने नज़र आता है शुमाली कोरिया ने, जब 2009 में क्लियरली शुमाली कोरिया को ये महसूस हो गया कि आईएईए के साथ तआवुन और एनपीटी के सिग्नेचर के बावजूद उसके ऊपर दबाव डाला जा रहा है, तो शुमाली कोरिया ने वाज़े तौर पर इंस्पेक्टर्स को अपने मुल्क से निकाल दिया और वहाँ की सारी सुपरविजन ख़त्म कर दी और तआवुन जो आईएईए के साथ है वो मुकम्मल ख़त्म करके उन्होंने वाज़े ऐलान किया कि वो फौजी और गैर फौजी दोनों सतह पर अपना एटॉमिक प्रोग्राम जारी रखेंगे। अब जाहिर है कि एक ये ऐसी एग्जाम्पल थी उस वक्त कि अगर जो बाकी दुनिया के मुल्कों ने एनपीटी पर साइन किए हुए हैं उनके साथ भी ऐसा ही सलूक किया जाएगा तो वो भी शुमाली कोरिया जैसा रिस्पांस देने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन एक खुशाइन बात यह है कि ईरान के जो सफीर हैं यूनाइटेड नेशन में, उन्होंने वहाँ पर इस रिपोर्ट के बाद वाज़े तौर पर ऐलान किया है कि ईरान किसी सूरत भी आईएए से तामन को ख़त्म नहीं करेगा, बल्कि वो मुज़ाकरात जारी रखने पर आमादा है और वो मुज़ाकरात के जरिए मसाइल का हल चाहता है। तो मेरा ख्याल है कि आईएए को भी इसको वेलकम कहना चाहिए और इल्ज़ामात की बजाय वो टेबल टॉक करें, और जो उनके को किसी किस्म का डाउट है वो टेबल टॉक्स में आकर उसको डिस्कस करके रिजॉल्व करने की कोशिश करें, तब तो कोई मुस्बत पेशरफ हो सकती है। अदरवाइज़ शुमाली कोरिया की तरह के मॉडल अगर रिपीट होना शुरू हुए तो फिर ज़ाहिर है 60 कंट्री हैं और उनके साथ जब ऐसे होगा तो जो असल एम था आईएए बनाने का कि दुनिया को एटमी हथियारों से पाक किया जाए, वो पाक करने के बजाय उसके अपोजिट जाना शुरू हो जाएगा। और जो हम देख चुके हैं कि खुद साउथ एशिया में इंडिया और पाकिस्तान न्यूक्लियर बम बना चुके हैं और इसके बावजूद के इतने जो इंटरनेशनल लेवल पर एग्रीमेंट्स थे उनके बावजूद अगर इस तरह की मूव आती हैं तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बड़ी एटमी ताकतें उन पर आयद होगी, इसलिए कि सबसे पहले वो आगे बढ़ें और एटमी हथियारों के खात्मे की अमली तौर पर सबूत दें और फिर छोटे मुल्कों पर इस तरह का दबाव डाला जा सकता है।
जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रशीद खान साहब। ईरान एटमी तवानाई के आलमी इदारे आईएईए एनपीटी और सीटीबीटी का रुकन है, इस हैसियत से जहां उस पर कुछ फराइज आयद होते हैं वहीं उसको कुछ हकूक भी हासिल होते हैं। मगरबी ममालिक और आईएईए ईरान के फराइज की तो बात करते हैं लेकिन उसके हकूक की बात उन्होंने कभी नहीं की, इस बारे में आप क्या कहेंगे?
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि यह टू वे प्रोसेस है और ईरान ने जब साइन किया एनपीटी तो इस वजह से ईरान ने साइन किया कि ईरान को यह हक हासिल होगा, इसलिए कि अंडर एनपीटी मैंने कहा कि अंडर आर्टिकल 4 ऑफ द एनपीटी इन एलियनेबल राइट है, जिसको जिस राइट को आप अलग नहीं कर सकते वैसा राइट है ईरान के पास या वो कंट्री जो सिग्नेटरी है उसके पास के वो न्यूक्लियर एनर्जी का पुरअमन इस्तेमाल कर सके, उस पर रिसर्च कर सके, उस पर प्रोडक्शन कर सके, उसकी खरीदारी कर सके, उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सके, उसको अपने यहाँ डेवलप कर सके, ये उसके इनएलिएबल राइट है। और आईएए का ये कंडीशन है कि भाई हम आईएए का मेन काम क्या है, आईएए का मेन काम है न्यूक्लियर सेफ्टी, न्यूक्लियर सिक्योरिटी, इंस्पेक्शन, वेरिफिकेशन। तो आप वेरिफिकेशन कर रहे हैं, आपने कई सौ आपने इंस्पेक्शन किया है, कई सौ आपके कैमरे लगे हुए हैं, मुसलसल ईरान आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं ईरान की गवर्नमेंट के क्या उनके यहाँ डेवलपमेंट है ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के तहत। तो इस पे ईरान ने बिल्कुल आईए ने बिल्कुल अलग रुख अपनाया है। ईरान ने का जो डेवलपमेंट है वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, पीसफुल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है। ईरान का जो प्रोग्राम है वो सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम है, जबकि आईए और P6 हैं या P5 हैं वो इसको एक, बल्कि मैं ये कहूँ खास करके P5 नहीं बल्कि जर्मनी और आपके फ्रांस और यूके और इसराइल, और इसराइल तो उसमें नहीं है लेकिन यूएसए, ये इस पुरमन तरीके को इसको सिक्योरिटी और डिफेंस और मिलिट्री प्रोग्राम बता रहे हैं। तो आईएए ने ये किया कि वो न कि अपनी अकल का इस्तेमाल करे और हकायक को देखे या ईरान में जो इंस्पेक्शन चल रहे हैं उनकी चीज़ों को देखे, बल्कि वो उनके दबाव में आकर के काम कर रहे। तो मैं ये समझता हूँ कि खुद आईएए अपने राइट्स, अपने जो उनके जो मिशन है, जो उनके जो गारंटीज है, उसी को वो खुद वायलेट कर रहे हैं, और लेकिन भुगतना पड़ रहा है उस ईरान को, उसको भुगतना पड़ रहा है। और उनको ये समझना चाहिए कि ईरान ने जब अगर साइन किया है आपके एनपीटी और वो मेंबर है आईएईए का, तो कोई भी कंट्री उसका अपना नेशनल इंटरेस्ट होता है, अगर उनके वो मेंबर हैं उसको रिपोर्ट कर रहे हैं, तआवुन कर रहे हैं, तो इस वजह से कर रहे हैं कि ईरान का जो हक है वो हासिल हो, और वो ईरान इसके लिए कर रहा है, तमाम चीज़ें बिल्कुल खुली हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आईएईए को ये बात समझनी चाहिए, और खास करके मैंने ये कहा कि आईएईए एक एब्सोल्यूटिस्ट अंदाज में काम कर रहा है, बल्कि मैं ये कहूंगा कि इररेस्पॉन्सिबल अंदाज में काम कर रहा है। आईएईए को ये नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूं कि यूकिया अमानो साहब के सुपरविजन में जब से ये डायरेक्टर जनरल हुए हैं तब से ज्यादा आईएईए की हालत खस्ता हुई है, काफी क्रेडिबिलिटी का प्रॉब्लम है उनके रिपोर्ट में। आप जानते हैं कि 2003 से लेकर 2009 तक आईएईए का खुद रिपोर्ट काफी पॉजिटिव है
जी,
और 2011 में उन्होंने निगेटिव दे दिया। तो मैं ये समझता हूं कि आईएईए को यह भी समझना चाहिए कि ईरान के भी अपने हुकूक हैं, उसके भी अपने राइट हैं, और अगर ईरान के वो हुकूक को वायलेट करते हैं तो नेचुरली ईरान को वो प्रिटेक्स्ट दे रहे हैं कि ईरान भी उनके साथ आगे चल के बहुत ज्यादा तआवुन ना करे।
जी बहुत बहुत शुक्रिया कंदील अब्बास साहब। सहयोनी हुकूमत ईरान की एटमी तनसीबात पर हमले की मुसलसल धमकियां देती रहती है, लेकिन आईएईए ने एक बार भी इसका नोटिस नहीं लिया। क्यों, क्या इस तरह की धमकियों पर आईएईए का कोई फरीजा नहीं है? हमारे पास 3 मिनट का वक्त है।
देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जो आईएईए की रिपोर्ट आई है, खुद इस रिपोर्ट के अंदर इसराइल का जिक्र ना होना एक बहुत बड़ी बायसनेस इसकी शो करता है कि मशरक़ वुस्ता में या मिडिल ईस्ट में खुद इसराइल वो वाहिद एटमी पावर है जो सिर्फ ना सिर्फ ये कि डिक्लेयर्ड अब बन गया है, बल्कि उसके पास एटमी हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा मौजूद है और बहुत लो लेवल पर जो लो इनरिच्ड जो वेपन्स हैं उन्होंने फिलिस्तीनियों के खिलाफ इस्तेमाल भी किए हैं, हिज़्बुल्लाह के खिलाफ इस्तेमाल किए हैं, ना सिर्फ बना रहे हैं बल्कि इस्तेमाल भी कर रहे हैं। और बल्कि ईरान के ऊपर जब हमले की धमकी देते हैं तो उसमें एटॉमिक पावर के यूज़ की भी बात करते हैं। ऐसी सिचुएशन में लाजम तो ये बनता है कि आईएईए में ना सिर्फ इसकी नोटिस लिया जाना चाहिए बल्कि यूनाइटेड नेशन की तरफ से, बाकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इसका नोटिस लिया जाना चाहिए ताकि जो रीजनल पीस है उसको जो वायलेट कर रहे हैं, उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसको रोका जा सके। ना ये कि ईरान की तरफ से जो रीजनल पीस को आगे बढ़ाने के लिए एटमी हथियारों से पाक मशरक़ वुस्ता की बात की जा रही है, इसको सपोर्ट करने के बजाय इसराइल को अगर सपोर्ट किया जाएगा तो इससे अमन व अमान की सूरत हाल मजीद खराब होगी, बेहतर नहीं होगी। अगर बेहतर बनाना है तो जो वायलेटर हैं, जो वायलेशन कर रहे हैं, उनको उनके अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और दूसरों को फैसिलिटेट होना चाहिए ताकि वो पीसफुल मैनर में अपना प्रोग्राम आगे बढ़ा सकें।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया अर्शी खान साहब, आप क्या कहते हैं इस बारे में? 1.5 मिनट का वक्त है हमारे पास।
मैं ये कह रहा था कि, हाँ, मैं ये कह रहा था कि मई 2010 में 189 कंट्रीज ने ये तय किया था कि पूरे वेस्ट एशिया को न्यूक्लियर फ्री जोन बनाया जाए, जोन फ्री फ्रॉम न्यूक्लियर वेपन। इसके बारे में यूकिया अमानो साहब ने भी कहा है कि 2012 में वो कॉन्फ्रेंस करेंगे, खास करके कि कैसे वेस्ट एशिया को न्यूक्लियर हथियारों से पाक किया जाए। और इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि 5 नवंबर को, इसी 5 नवंबर को इजिप्ट के जो एम्बेसडर हैं उन्होंने भी कहा है कि भाई आप इस पे एक्शन लीजिए और पूरे वेस्ट एशिया को फ्री बनाइए। और मैं ये समझता हूं कि अमेरिका को, सदर ओबामा साहब को सबसे इंपॉर्टेंट काम जो वेस्ट एशिया है वो ये है कि वेस्ट एशिया को फ्री फ्रॉम न्यूक्लियर वेपन्स बनाया जाए, उससे दूध का दूध और पानी का पानी सामने नजर आ जाएगा।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अर्शी खान साहब। इसी के साथ हम डॉक्टर कंदील अब्बास साहब के भी शुक्रगुजार हैं। बहरहाल, इसमें दो राय नहीं कि योकिया अमानो ने फनी निकात के बजाय अमेरिका और इसराइल के इल्ज़ामात को बुनियाद बनाकर ईरान के खिलाफ रिपोर्ट तैयार की और जनरल असेंबली में इसको पेश किया, और ये बात बिल्कुल साफ और वाज़े है कि ये रिपोर्ट पूरी तरह से सियासी मुहर्रिकात के तहत और अमेरिका और सहयोनी लॉबी के दबाव में पेश की गई है। और इस तरह की रिपोर्टों का इसके अलावा और कोई नतीजा बरामद नहीं हो सकता है कि आईएईए का वक़ार मजरूह हो और इसका एतबार दुनिया की निगाह में खत्म हो जाए। प्रोग्राम के बारे में हमें आपकी राय का भी इंतजार रहेगा। इसी के साथ हम आपसे इजाजत चाहते हैं। खुदा हाफिज़।